क्षितिज एक साथ यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत।
प्रिय श्रोताओं नमस्कार, मैं डॉक्टर देवव्रत सिरतन क्षितिज कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको याद दिला दूं कि क्षितिज कार्यक्रम विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आज के क्षितिज कार्यक्रम का विषय है यूरोप में हिंदी की दशा व दिशा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे मध्य में डॉक्टर इमरे बंगाजी आए हुए हैं। डॉक्टर इमरे बंगाजी के बारे में दो शब्द। डॉक्टर इमरे बंगाजी इन दिनों द ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके में एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी पद पर कार्यरत हैं। आपने विश्व भारती शांति निकेतन भारत से PhD की है। शोध का विषय था आनंद घन के कवित्व में उपमामूलक अलंकारों की योजना। आपने इंडोलॉजी में MA किया है। विषय है हंगरी भाषा और साहित्य। इसके अलावा केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली से आपने डिप्लोमा किया हुआ है और आपने विश्व भारती शांति निकेतन से बंगाली भाषा में डिप्लोमा भी किया हुआ है। डॉक्टर बंगाजी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन यूनिवर्सिटी में बाह्य परीक्षक यानी एक्सटर्नल एग्जामिनर के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर इमरे बंगाजी ने कई सम्मेलनों संगोष्ठियों व प्रदर्शनियों का आयोजन किया है। भोपाल भारत में लगे 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में आपको सम्मानित किया गया है। डॉक्टर इमरे बंगाजी इन दिनों आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ओरिएंटल स्टडीज फैकल्टी में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर हैं। हिंदी विभाग से आप जुड़े हुए हैं। हिंदी शिक्षण को लेकर आपका कार्य किस रूप में हो रहा है, इस पर कुछ प्रकाश डालिए।
श्रोताओं को मैं भी सादर नमस्कार करता हूँ। बड़े आनंद की बात है कि मैं आप लोगों के सामने हिंदी के बारे में कुछ बात कर सकता हूँ। ऑक्सफोर्ड में मैं हिंदी, उर्दू और ब्रजभाषा तीनों को पढ़ाता हूँ और इसके अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट को भी पढ़ाता हूँ जिनका नज़दीकी संबंध भाषा से नहीं है, फिर भी संबंध तो है। हिंदी पढ़ाने में तो हमारे पास 2 साल का ही कार्यक्रम है और हिंदी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अच्छा। जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स पढ़ते हैं अरबी, फारसी, तुर्की या संस्कृत, वे लोग हिंदी भी चुन सकते हैं एक द्वितीय भाषा के रूप में और 2 साल तक हिंदी सीखते हैं। और इसके अलावा मैं स्नातकोत्तर पढ़ाई में भी शामिल हूं और हम ऑक्सफोर्ड में एक दक्षिण एशियाई अध्ययन का कोर्स चलाते हैं साउथ एशियन स्टडीज़ नाम से। और उस कोर्स में लगभग 20-25 लोग आते हैं और उन 20-25 लोगों में से 5-10 की रुचि भाषाओं में भी है, चाहे हिंदी में हो, उर्दू में हो या ब्रजभाषा में, और मैं इन लोगों को पढ़ाता हूँ।
आपके जो छात्र हैं वे लोग अहिंदी भाषी हैं या फिर हिंदी भाषी हैं?
आमतौर पर अहिंदी भाषी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन में हिंदी सुनी है, बचपन की हिंदी आती है। अच्छा। लेकिन साहित्यिक हिंदी नहीं आती। और बहुत बार तो ऐसे भारतीय लोग भी आते हैं जिनको प्रेमचंद पढ़ना नहीं आता। अच्छा। तो मैं उनको कहानियाँ पढ़ाता हूँ, नाटक पढ़ाता हूँ, लेकिन बहुतायत तो अहिंदी भाषी हैं और वे लोग 2 साल में तो साहित्य सीखने तक की हिंदी पढ़ लेते हैं।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आप बाह्य परीक्षक के रूप में कार्यरत रहे, अपने अनुभव के बारे में कुछ प्रकाश डालिए।
जी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी ऑक्सफोर्ड जैसा है, वहाँ भी हिंदी आजकल एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अच्छा। और जो अरबी फारसी सीखते हैं उनमें से कुछ लोग तो हिंदी भी चुन लेते हैं। पढ़ाई का स्तर तो लगभग एक जैसा है। अंतर इतना है कि ऑक्सफोर्ड में डॉक्टर ऐश्वर्य कुमार खुद भारतीय हैं और वे ही हिंदी पढ़ाते हैं, और मैं ऑक्सफोर्ड में हंगेरियन मूल का हूँ, तो मुझसे कभी कभी भाषा की गलतियाँ होती हैं। तो एक मातृभाषी हिंदुस्तानी भी मेरी सहायता करती हैं। अच्छा। और छात्र लोग अभ्यास मातृभाषी लोगों से भी करते हैं, व्याकरण मुझसे सीखते हैं, साहित्य मुझसे सीखते हैं, लेकिन अभ्यास मातृभाषी लोग कराते हैं।
डॉक्टर इमरे बंगाजी, साल 2018-2019 में आप लंदन यूनिवर्सिटी में हिंदी, बंगाली उर्दू, गुजराती एवं भारतीय सिनेमा में आप बाह्य परीक्षक रहे, इस पर आपकी भूमिका क्या रही?
मुझे बाह्य परीक्षक होने से पता चला कि लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किस तरह होती है, वहाँ छात्रों की रुचि कैसी है और छात्रों का स्तर क्या होता है। और लंदन में SOAS स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज है, तो वहाँ भारतीय भाषाओं का अध्ययन होता है। पहले तो बहुत सारी भाषाएं थीं, आजकल भाषाएं कम होती जा रही हैं। पहले तो वहाँ मराठी भी पढ़ाई जाती थी, तेलुगु वगैरह भी पढ़ाई जाती थी। आजकल तो गुजराती और पंजाबी शामिल हैं, लेकिन छात्र बहुत कम मिलते हैं। हिंदी और उर्दू के छात्र कुछ अधिक संख्या में मिलते हैं। ब्रिटेन में एक विशेष बात यह है कि कभी कभी उर्दू में हिंदी के मुकाबले ज़्यादा रुचि है, क्योंकि वहाँ भारतीय मूल के मुसलमान या पाकिस्तानी लोग बहुत बड़ी संख्या में बसे हुए हैं, तो उनकी रुचि उर्दू के प्रति है।
आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आप ब्रज भाषा और पुरानी हिंदी के विविध रूप पर भी लेक्चर देते हैं, इस पर कुछ हमें बताइए।
जी, मेरा शोध कार्य तो ब्रज भाषा के एक बहुत अच्छे कवि आनंद घन पर हुआ था, और आगे चलकर भी मैं ब्रजभाषा पढ़ाता हूँ। ब्रजभाषा मैंने पहले दिल्ली में और उसके बाद फिर वृंदावन में, जो बिल्कुल ब्रज क्षेत्र है, वहाँ के विद्वानों से सीखी। और ब्रजभाषा तो विश्व के बहुत कम विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऑक्सफोर्ड में मुझे ब्रजभाषा पढ़ाने का मौका मिलता है। और छात्रों की भी रुचि है इसमें, जैसे ऑक्सफोर्ड में अभी सिर्फ 3 छात्र हैं, लेकिन ये 3 छात्र बहुत अच्छे हैं। एक इटालियन लड़का है, एक कोस्टारिका की पोस्ट डॉक्टरल लड़की है, और एक पाकिस्तानी लड़का। तो ब्रजभाषा, पता नहीं कि उस लड़के के अलावा पाकिस्तान में किसी को ब्रजभाषा आता है या नहीं, लेकिन मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि किसी पाकिस्तानी को ब्रजभाषा पढ़ा सकता
हूँ। जी बिल्कुल। अब आते हैं आज के हमारे मुख्य विषय की ओर, यूरोप में हिंदी की दशा व दिशा। और वो है डॉक्टर इमरे बांगा जी, आप यूके और यूरोप में हिंदी की स्थिति से वाकिफ हैं, कहाँ हिंदी आगे बढ़ रही है और कहाँ पर कुछ कमजोरियाँ, हिंदी अटकी हुई है, इस पर थोड़ा सा हमें बताइए।
जी, तो हिंदी आगे बढ़ रही है इस दिशा में कि आजकल आईटी में हिंदी का इस्तेमाल हो सकता है। जब मैं छात्र था तो हिंदी पुस्तक मिलना तो नहीं के बराबर था। आजकल तो इंटरनेट पर चलें तो इतना ज़्यादा पाठ हमको मिल सकता है कि 20-30 साल पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो इससे हिंदी की बड़ी संभावनाएं हैं, और हिंदी सुनने को तो मिलता भी नहीं था। अगर हम दूतावास जाते थे तो तब लोगों से बात कर सकते थे और हमारे टीचर लोगों से बात कर सकते थे। अभी तो इंटरनेट से डाउनलोड करके तो हिंदी फिल्म वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। ये एक हिंदी पढ़ाने में इससे बहुत सहायता मिलती है। मैं छात्रों को ऐसा होमवर्क दे सकता हूँ कि YouTube में यह और यह देखिए और इनका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। पहले तो ऐसा नहीं हो सकता
जी,
था।
बिल्कुल।
तो ये एक बहुत अच्छी बात है। चुनौतियाँ तो बहुत हैं और उसके बारे में भी शायद कुछ बताऊँ।
ठीक है। यूरोप में अहिंदी भाषी लोग हिंदी को विदेशी भाषा के रूप में पढ़ते हैं, ये लोग किन कारणों से हिंदी पढ़ते हैं?
जी, मैं अलग अलग देशों में कारण अलग होते हैं। इंग्लैंड में भारतीय मूल के बहुत सारे लोग हैं, और ये लोग हिंदी अपने मूल से जुड़ जाने के लिए सीखते हैं। और कुछ लोग भारतीय इतिहास में रुचि लेते हैं, कुछ लोग तो समाज सुधारने के लिए हिंदी सीखते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि अगर हम हिंदुस्तान जाते हैं और सिर्फ अंग्रेजी में बोलते हैं तो गरीब लोगों से या आम लोगों से अच्छी तरह से शायद बात नहीं कर सकते, एक सीमित समाज से हम मिल सकते हैं, तो इसीलिए भी हिंदी सीखते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो साहित्य के लिए हिंदी सीखते हैं और बाद में अनुवाद करते हैं। मेरे जो एडवांस स्टूडेंट्स हैं, लगभग सभी ने हिंदी साहित्य का अनुवाद किया है अंग्रेजी में।
तो कह सकते हैं कि यूरोप में हिंदी के सामने एक जबरदस्त चुनौती है।
जी,
इस पर आप क्या कहेंगे?
जी, हाँ, चुनौती के कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि आज विश्व के स्तर पर अंग्रेजी फैल गई है और लोग अगर अंग्रेजी सीखेंगे तो कहीं भी जाकर अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, तो इसी वजह से भाषा सीखने में रुचि कम हो गई है। हम अंग्रेजी सीखेंगे तो उससे सब कुछ चलेगा, तो बहुत लोगों का यही मनोवृत्ति है, यही मान्यता है। तो यह एक चुनौती है। दूसरी चुनौती यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर मैं गूगल में अंग्रेजी में कुछ लिखूंगा तो वो हिंदी अनुवाद दे देगा, एक बटन दबाऊंगा तो वो बोलेगा भी, और आगे चलकर ये अनुवाद तो और अच्छे होंगे। तो लोग इससे भी भाषा सीखने की रुचि खो जाते हैं। और तीसरी बात यह है भारत में हिंदी की स्थिति। मैं भारत होके आया हूँ तो मैं कभी कभी निराश हो जाता हूँ कि वहाँ जो हिंदी मीडियम स्कूल हैं वो बंद होते जा रहे हैं और माँ बाप अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डालते हैं, और मुझे ऐसा कोई हिंदी प्रेमी ना मिला जो अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में ना डाले।
अच्छा, अच्छा।
और ये तो हिंदी की स्थिति नहीं है, मराठी, गुजराती, बंगला सभी लोग भाषाओं की स्थिति है। तो आगे चलकर इस चुनौती को कैसे सामना करें, इस पर तो सिर्फ मुझे नहीं बहुत लोगों को सोच विचार करना है। एक बात तो यह हो सकती है कि अगर उच्च कोटि का हिंदी शिक्षण की संस्थाएं स्थापित हो जाएं, जहां माँ बाप सोचेंगे कि अगर मैं इस संस्था में अपने बच्चे को दे देता हूँ वो अंग्रेजी भी सीखेगा और अंग्रेजी मीडियम स्कूल से भी अच्छा शिक्षण उसको मातृभाषा में मिलेगा।
तो पहले माता पिता को थोड़ा सा ये बताना होगा,
माता पिता को और शायद जो स्थानीय सरकार है उनको भी इसके बारे में सोचना है कि हम 2-3 स्कूल के लिए पैसा दे दें जो इतने अच्छे स्तर की शिक्षा दें जो अंग्रेजी स्कूलों से कम्पीट कर सकें या उससे भी अच्छा हो जाएं, क्योंकि स्कूल भाषा के माध्यम से बनते नहीं, स्कूल तो शिक्षण के तरीके से बनते हैं। और हमारे यूरोप में हर एक देश में मातृभाषा में शिक्षा होती है। तो मैंने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा सब हंगेरियन माध्यम से किया है।
हिंदी को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
एक तो यही है कि आम लोगों को हिंदी में बोलने से संकोच नहीं होना चाहिए। बहुत लोग तो अपने पद को दिखाना चाहते हैं कि मैं अंग्रेजी जानता हूं तो अंग्रेजी में बोलूंगा, और विश्व में तो बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी के प्रति उत्साहित हैं, अनुवाद करते हैं या हिंदी वालों से बोलना चाहते हैं। एक बात जो जिसके बारे में मैं लंबे समय से सोचता हूँ यही है कि छात्रों को कुछ ऐसा फोरम मिल जाए जहाँ अगर वे लोग कुछ हिंदी में लिखते हैं तो प्रकाशित हो जाएं, उनका प्रचार हो जाएं, या रेडियो में जा सकें और कुछ बात कर सकें। यूरोप में तो कभी कभी हिंदी क्लास में तो 10-20 लोग भी बैठते हैं, लेकिन जब वे हिंदी के स्नातक हो जाते हैं तो हिंदी से उनको काम नहीं मिलता तो हिंदी भूल भी जाते हैं, तो उनको बचाना है।
ठीक है, तो प्रिय श्रोताओं, आज का हमारा क्षितिज कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। हमें पूरी आशा है कि आपने इसे पसंद किया। मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ समय पहले आप डॉक्टर इमरे बंगार जी को सुन रहे थे। वे इन दिनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर हिंदी के अधिकारी हैं। डॉक्टर इमरे बंगार जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप MBC के स्टूडियो में आए। आप श्रोताओं को भी धन्यवाद। ये कार्यक्रम आप तक पहुँचाने में हमारे सहयोगी रमा जी का उसको भी धन्यवाद देते हैं। अगले कार्यक्रम तक नमस्कार।
क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।